నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ సబ్లో కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. తో ఆజ్ కా సంధ్యా జాగృతి కార్యక్రమ 29 అప్రైల్ 2014 కే దిన ఆప్ సబ్కా స్వాగత హై. భగవాన్ కా నామ ఇత్నా పవిత్ర హై కి లోగో కో పతా హై యా నహీ హై, లోగ్ జానతే హై యా నహీ జానతే హై, లేకిన్ జబ్ భీ భగవాన్ కా నామ పుకారతే హై ఉన్కే సారే పాప నష్ట హో జాతే హై. తో సారే పాప నష్ట హోనే కే బాద్ భీ కోయి వ్యక్తి సంత బనా హువా నజర్ క్యూ నహీ ఆతా, క్యూకి ఫిర్ దుబారా పాప కర్నా ఆరంభ కర్తా హై, మత్లబ్ పాప కర్నే కా సిల్సిలా బంద నహీ హోతా. లేకిన్ భగవాన్ కా నామ కా అసర్ సబ్కే ఉపర్ హోతే రహతా హై. లేకిన్ అగర్ భగవాన్ కే నామ కా పూరా అసర్ హమకో చాహియే తో హమకో పాప కర్నా ఛోడ్నా హోగా. పాప కర్నే కా మత్లబ్ క్యా హై? ఆప్ బోలేంగే హమ్ తో కుచ్ పాప నహీ కర్తే, झूठ नहीं बोलते, किसी का चोरी नहीं करते, किसी का लूटते नहीं हैं. पाप करने का मतलब है भगवान को छोड़कर खुद के लिए कार्य करना, भगवान को भूलकर केवल अपने लिए ही, अपने इंद्रिय भोग के लिए, स्वार्थ के लिए जीना, इसको पाप कहा जाता है. भले वो अच्छा कार्य भी कोने हो, अगर भगवान को छोड़कर, भगवान को भूलकर अपने मर्जी के लिए किया होगा तो ऐसे कहते हैं కృష్ణ భులియా జీవ భోగవాంఛ కొరే నికటస్థ మాయా తారే ఝపటియా ధోరే. కృష్ణ కో భూల్ కర్ అగర్ ఆప్ కోయి కార్య కర్తే హో తో పాస్ మే హీ జో మాయా హై వో ఆప్కో ఝపట్ కే పకడ్ లేతీ హై. చాహే వో చోరీ డకైతీ కా కామ్ నా హో, ఖాలీ ఐసే హీ జీతే హో, అచ్చీ తరహ జీ రహే హో, సమాజ్ కార్య కర్ రహే హో, లేకిన్ సమ్ సిద్ధిర్ హరితోషణం, హర్ ఏక్ కార్య జో హమ్ కర్తే హై, अच्छा बुरा छोटा बड़ा, वो सब काम जो है वो केवल भगवान के आनंद के लिए करना चाहिए, तब जाकर वो काम छोटा भी होगा तो भी उसका पूरा लाभ हमको मिलता है. तो भगवान का नाम जो है ना, जैसे आप लोगों ने उस दिन इतना सुंदर भगवान का नाम गाया, इतना सुंदर राम भगवान का भजन गाया, तो उस राम भगवान का नाम जो आपने लिया, जो पूरी तरह से भजन किया उनका नाम का, उसका पूरा लाभ अगर आपको चाहिए तो आपके जीवन को आपको उनके भक्ति के लिए अनुकूल बनाकर जीना पड़ेगा. आप जैसा भी चाहे जीकर, अगर बीच में कोई भगवान का नाम लिया और पूरी असर का उम्मीद किया तो वो नहीं हो सकता है. जैसे अगर आपको पढ़ाई करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने हैं तो आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी होगी और कोई टाइम पास नहीं करना होगा, टीवी देखने का, घूमने का, इधर उधर, केवल पढ़ाई 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 और पढ़ाई के अनुकूल जो कार्य है वो करते रहेंगे तो आपको पढ़ाई का पूरा रिजल्ट मिलेगा एंड में. तो बहुत लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं फिर शाम को टीवी में सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, फिल्म स्टार के बारे में पढ़ते हैं, मैगजीन खोल के पढ़ते हैं, हाँ पाक्षिक मासिक खोल के बैठते हैं, सब दुनियादार की बातें डिस्कस करते रहते हैं. तो उससे क्या हो गया, आपने साबुन लगाया उसके बाद धूल में जाके लौट गए, साबुन तो लगाया, अच्छा चकाचक स्नान किया पूरा, लेकिन बाद में जाकर वापस रेती में लोटपोट हो गए. हाथी कैसे करता है, हाथी मालूम है ना आपको, उसको कहते हैं कुंजर स्नान, कुंजर यानी हाथी. तो कुंजर मतलब क्या होता है, जब हाथी जब नदी में डुबकी मारता है तो बहुत अच्छी तरह स्नान करता है, वो सोंड में पानी ले लेके धोता है अपने आप को, लेकिन जैसे बाहर आता है फिर मट्टी में सोंड डालता है और पूरा मट्टी बॉडी पे डाल देता है. तो इस स्नान करके क्या फ़ायदा है, अगर साफ रहना है तो फिर कंटिन्यूस आपको धूल से बच के रहना होगा और स्नान का पूरा लाभ मिलेगा. तो उसी तरह से भगवान के नाम का पूरा असर अगर आपको चाहिए तो आपको चार नियम का पालन करना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ देना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना होगा, नशा छोड़ देना होगा, जुआ खेलना छोड़ देना होगा, बाकी जो बातें हैं घर की दुनियादारी की वो सब छोड़ देनी पड़ेगी और भगवान के प्रसाद का ही ग्रहण करना पड़ेगा। टीवी है, फालतू चीज़ें हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, टाइम लगाना चाहिए। अनुकूल जीवन, अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, वो छोड़ देना। ऐसा जिएंगे तो आपको एक एक नाम का पूरा लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी आपके आंखों से आंसू आएंगे भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में। लेकिन वो ऐसे होते हुए हमारे नजर में नहीं आता, कभी हमारी भी आंखों से आंसू नहीं आते, क्योंकि अभी भी हमारा जीवन कंप्लीटली 100% प्योर नहीं हुआ है। हमारा विचार, हमारा क्या सोचते हैं हम लोग, किस समय क्या बुरा विचार आता है मन में, वो सब तो खत्म नहीं हुआ है। तब जाकर भगवान का नाम का पूरा असर मिलेगा। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान के नाम को मैं पुकारता हूं तो लगता है मुझे हजारों जिब्बा होनी चाहिए मेरी, एक साथ मैं हजारों जीव से पुकारना चाहता हूं, और जब मैं पुकारूंगा तो मुझे हजारों कान की जरूरत लगती है कि मैं हजारों कान से उस नाम को सुनूंगा। ऐसा हमको लगता नहीं कभी? हमको एक माला करते करते भी इतना लगता है कि कब खत्म होगी 16 माला। तो हनुमान जी ऐसे भक्त थे भगवान के, उनका सारा जीवन ना एकदम फोकस में था, ओनली गॉड और कुछ नहीं। उनके जीवन में कभी असंभव नाम की चीज नहीं थी। एनीथिंग भगवान की सेवा में आप बोलेंगे असंभव है, ये नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण अभी बेहोश पड़ा हुआ है और उसकी दवा जो है वो हिमालय के अंदर एक पहाड़ के अंदर छुपी हुई है, लाओ, वो लाएगा तो बचेगा वो। और वो भी किसके पास बोल रहे मन में, युद्ध में लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए हैं, इंद्रजीत का शक्ति उसको लगा हुआ है और राक्षसों का जो डॉक्टर है उसको उठा के लेके आया घर, घर के साथ में, क्योंकि बीमार है आदमी, इमरजेंसी में है, कोई इसमें ऐसा करना अच्छा है कि नहीं मालूम नहीं है। तो पूरा घर उठा के लेके आया उसका, शत्रु के पक्ष में गया, वो बोला कि बीमार पड़ा है इसको क्या करना है। तो देखते हैं इसको बहुत भयंकर शक्ति लगी हुई है, इस शक्ति का इलाज करना है तो केवल संजीवनी बूटी उसको बचा सकती है। वो कहाँ पर मिलेगी? तो हिमालय में मिलेगी। युद्ध कहाँ हो रहा है बोलो? युद्ध कहाँ हो रहा है? श्रीलंका के अंदर युद्ध हो रहा है। 100 योजन 800 मील पार करके ये लोग उधर गए हुए हैं, उस देश में युद्ध भूमि वहाँ पर है। इंडिया का कोना नहीं है वो, इंडिया के कोने से निकल कर ब्रिज से क्रॉस करके अलग अलग देश में गए, उधर उधर से वो बोल रहे हैं कि भाई हिमालय में जाना है आपको। कितना दूर है वो? हाँ, सेतु हिमाचल, कितना दूर है वो। तो कौन आ सकता है ये काम करने के लिए? नहीं, इम्पॉसिबल है ये। और कितना दिन जिएगा ऐसा इस कंडीशन में, कोमा में? मतलब रात होने के पहले सुबह होने तक अगर नहीं आया दवा तो वो मर जाएगा। टाइम भी बहुत कम है। हाँ, लेकिन हनुमान ने ये नहीं बोला कि सर क्या कर सकते हैं, टाइम भी बहुत कम है, जाके आने जाने में इतना टाइम, आने में इतना टाइम, तो पता नहीं कौन से पर्वत में है, ढूंढने में इतना टाइम, और नहीं मिलेगी तो पता नहीं आओ कितना टाइम लगेगा। सर गणित किया मैंने, लेकिन वो रात के पहले नहीं आ सकते सर, सॉरी सर। ऐसा अगर बोलते ना तो भी लोग उसको मानते हैं, ठीक है भाई डिफिकल्ट चीज़ है क्या कर सकते हैं। लेकिन उनके लाइब्रेरी डिक्शनरी के अंदर ना इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं था। मतलब कुछ भी हो, अगर भगवान की सेवा हो तो पॉसिबल करना ही करना है। तुरंत आकाश में उड़ गए। जब वो वहाँ पहुँचे ना हिमालय के पास, तो जिस पर्वत पर संजीवनी बूटी के पौधे थे उस पर्वत ने सारे बूटियों को छुपा लिया, क्योंकि तो पता नहीं ना कौन बंदर आके उसको उठा के लेके जा रहे हैं। उनको क्या मालूम कि राम का सेवक है, उनको क्या मालूम लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए हैं, उनको क्या मालूम इमरजेंसी है, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन वो पर्वत भी जागरूक है और वो वैली भी जागरूक है, तो उन्होंने संजीवनी बूटी को छुपा लिया, क्योंकि संजीवनी बूटी का एक स्वभाव था, जहाँ पर संजीवनी बूटी हुआ करती थी वहाँ पर ऐसा प्रकाश निकलता था उसमें से। दूर से जब देखा तो प्रकाश था, जब पास में गया तो बोलता है बटन बंद कर दिया, लाइट बंद हो गया। हनुमान जी परेशान हो गए, उनके पास टाइम नहीं है, ये क्यों बंद किया, क्यों छुपाया, किसको मिलना है, इसका बॉस कौन है, उससे मिला मेरे को, टाइम नहीं है उनके पास सोचने के लिए, कौन इसका इंचार्ज है, कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, देयर इज नो टाइम। तो क्या किया हनुमान ने, पूरा पर्वत को उठा लिया। बोला हमारा वैद्य जो है ढूंढ के निकाल रहा, मेरा काम तो पूरा उठाने के लेकर, पूरा जड़ी बूटी जितना भी था सबका पर्वत उठा के ले गया, वो आकाश में भाग गया, बराबर टाइम पे पहुंच गया, किधर भी बीच में टाइम पास नहीं किया, क्योंकि उसका एक क्षण का भी रेस्ट का समय आएगा ना बीच में तो भी किसी की मौत हो सकती है ऑफर, है ना। आप बोलेंगे थक गया हूँ, वो इतना दूर गया, इतना दूर से आया, इतना हवा में उड़ रहा हूँ, खाना पीना कुछ है ही नहीं बीच में, ना लंच ब्रेक है, डिनर ब्रेक, कोई ड्रिंक मिल रहा है, कुछ फल मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मन में कैसा है, मुझे लंच बिंच मिले या ना मिले, प्रभु की सेवा करने का मौका मिला है, लंच वगैरह बाद में देख लेंगे, कोई ओवर टाइम नहीं दिया उसको, कोई पगार नहीं दिया, कैसा सेवक था हनुमान जी। देखो सोचो आप क्या भावना थी, हम लोग अपने हर सेवा को गिनते हैं, कितने घंटे हो गए कितना ओवर टाइम हो गया, इसका रेट क्या था, वो संडे का था, सैटरडे का था, डबल ड्यूटी किया, सिंगल ड्यूटी किया, कितना सोचते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग भगवान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, हनुमान जी भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो सब कुछ भूल कर, भूख प्यास नींद तनख्वाह रिवॉर्ड लाभ प्राप्ति सब छोड़ कर आ गए, वो वैद्य को उधर ही खड़ा कर रखा ऑन कॉल जाने नहीं दिया उसको, आपको इधर रहना, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो जाए कि वो आ जाए तुम घर पे सो जाए, टाइम जाएगा ना बीच में और सूर्योदय हो गया तो खत्म। वैद्य को वहाँ ऑन कॉल रखा था, वो जैसे ही पहुंचे तुरंत वैद्य ने संजीव बूटी ढूंढ के निकाला, और ऐसा नहीं कि वो तुरंत निकाल के देने का था, उसका प्रोसीजर था और कुछ उसको कुटने का था, कुछ करने का था, उसको दवा बनाया और लक्ष्मण जी को सुंघाया उसका दवा, तो होश में आ गए। इसका मतलब हनुमान जी कैसे हैं, संकट मोचन, इमरजेंसी में सब लोग सेवक काम नहीं आते, और बॉस जानता है बराबर से इमरजेंसी में किसको बोझ रहे हैं, कौन ये कर सकता है, हर के सबको इच्छा अच्छी है, सबके दिल में बहुत भावना अच्छी है, लेकिन करने वाला कोई एक ही होता है, उसको बराबर चुनते हैं, बोला इसको बोलो ये करेगा बराबर से। रात को आपको 12 बजे आपको, आप बेलगांव में थे, आपको फोन आया दिल्ली से कि आपका एक रिलेटिव बॉम्बे में नरीमन पॉइंट पे बीमार है, उसको तुरंत वहां से लाना है, तो एम्बुलेंस चाहिए, रात को उस समय एम्बुलेंस चाहिए, तो आपको पक्का पता है कि किसी को किसको बोलेगा तो वो काम हो जाएगा, तो उसी को फ़ोन करेंगे बराबर से, और वो जरा बराबर उसको भेजेगा और पेशेंट को लेके डॉक्टर को वो दिखाएगा। उस तरह से हनुमान जी थे, इसलिए हनुमान जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, असंभव काम होगा तो उसको संभव करने का शक्ति केवल हनुमान जी में था। उसके पहले भी जब सीता जी का ढूंढने का काम था, 4 दिशा में सेना का 4 विभाग करके 4 नेताओं का ग्रुप करके भेज दिया गया था, एक ग्रुप अपने बंदरों के साथ पूर्व में जाओ, दूसरा को पश्चिम में, तीसरा उत्तर में, चौथा दक्षिण में, और तीनों तरफ से लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, हाथ हिला के वापस आ गए। कुछ लोग बोल रहे थे कि वापस जाना ही क्यों है, राम भगवान को मुंह दिखाने के लिए, उससे अच्छा यही हम लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन का मतलब ही क्या है, हम सीता को ढूंढ के नहीं लाया, प्रभु की सेवा नहीं कर सके, तो मर जाना अच्छा है उससे। उनकी भावना भी सही है, क्योंकि जिस दिशा में सीता है ही नहीं वहाँ ढूंढ के कैसे मिलेगी उसको, तो 3 दिशा तो ऐसे वापस आ गए। 4थी दिशा में दक्षिण दिशा में हनुमान जी सुग्रीव और जांबुवन समुद्र के पास में थे, और आपको मैं एक कथा बताऊंगा उस समय क्या हुआ। सब बंदर लोग बैठे थे ऐसे चिंता में, कहाँ जाएंगे अभी, कैसे ढूंढेंगे, पता नहीं कहाँ पर है, हमको भी आत्महत्या करना पड़ेगा, हम प्रभु को नहीं मुंह दिखा सकते, मर जाएंगे सब लोग। और एक संपाति नाम का बहुत भयंकर गिधड़ वहां पर बैठा था, वो सबकी बातें सुन रहा है, सोच रहा है अच्छा भोजन मिलेगा आज, गिधड़ है ना वो, उसको मुर्दे खाने में अच्छा लगता है। लेकिन बोलते बोलते सुनते सुनते उस कान में उसकी खबर आई कि जटायु ने बताया था कि रावण के राज्य में उसको लेके गए हैं, और रावण का राज्य समुद्र के परे है, तो पता चल गया कि अभी वो उधर है, लेकिन जाना कैसे वहां पर है, तो जटायु का नाम ले तुरंत कान खड़े हो गए, क्योंकि जटायु उसका भाई था। जब जटायु का नाम सुना तो वो बंदरों के पास में गया और बातचीत किया कि आपको कैसा मालूम मेरे भाई का नाम, तो पूरी कथा जो है जो राम जी को जटायु ने सुनाई थी वो राम जी ने सब बंदरों को सुनाई थी, तो सब बंदरों ने अपने भाई को उसका कहानी बताया। तब भोजन करने के बदले में, बंदरों को खाने के बदले में उसके मन में विचार आया कि अरे इनको सेवा करना चाहिए, मेरे भाई भगवान के भक्त थे, भगवान की सेवा में प्राण दिए उन्होंने और उसकी ही आगे बढ़ाने के लिए सेवा अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसके आगे बढ़ रही है सेवा, तो उसमें ये लोग यहाँ बैठे के दुखी हो रहे हैं। तो फिर से आगे पेड़ पर बैठ गया वो और गिद्धों को बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, इंसान को दिखाई नहीं पड़ता है, शेर को और सिंह को और कुत्ते को बहुत दूर तक स्मेल आता है, हमको नहीं इतना आ सकता है, दृष्टि भी बहुत ज़्यादा होती है शेर की और कुत्ते की और बिल्ली की। वह संपत्ति गिद्ध को दूर तक दिखाई पड़ता था, तो वो पेड़ पर बैठकर सीता को देख पाया अशोक वाटिका में बैठी हुई। 800 मील दूर लंका के अंदर अशोक वाटिका के अंदर सीता दुख करके बैठी हुई है पेड़ के अंदर नीचे और रो रही है, वो देख रहा है और बोल रहा है वो देखो मुझे दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। तो सबको उन्होंने एकदम हौसला बढ़ा दिया, तो एकदम निराश हो गए थे कि अभी कैसे ढूंढना है, उसको देख के बताया देखो वहाँ बैठी हुई है। फिर उन्होंने बोला कितना दूर है यहाँ से, तो बोलते कि 100 योजन दूर है यहाँ से, मतलब एक योजन 8 मील का होता है, 800 मील दूर है यहाँ से। तो सब लोग डिस्कस करने लगे कि तेरे को कितना जंप करने को आता है, बोलता मैं 60 योजन तक जंप मार सकता हूँ, 480 मील तक मैं कूद सकता हूँ, लेकिन उसके आगे फिर मैं आगे समुद्र में गिर जाऊँगा, उसके आगे कैसे जाऊँगा। तो हर एक बांदर अपना बोलने अपनी बोलने लगे मेरी क्षमता कितनी है, मेरी ताकत कितनी है। सब लोग का नंबर छोटा छोटा था। जाम्बुआन नाम का एक भालू था उसके अंदर, वो बड़ा वीर था, वो ब्रह्मा का पुत्र था। वो बोला मैं 90 योजन, हाँ मतलब 89 कितनी 72 720 मील तक मैं कूद सकता था जब मैं जवान था, अभी मेरे को उतना जमेगा नहीं, लेकिन 100 मील तक इसका नाम नहीं आया। तो फिर सब लोग उदास हो गए, अरे सब मालूम पड़ा अभी सब डिस्टेंस मालूम पड़ा, सब मालूम पड़ा, सीता का दर्शन भी हुआ और अभी प्रॉब्लम है कि इतना जंप मारेगा कौन, अपने पास अभिमान तो है नहीं। तो ये सब जब बात चल रही थी तो हनुमान जी एक कोने में खड़े होकर ऐसा उदास बैठे थे, तो जाम्बुवान को एक कहानी याद आई उस समय, वो कहानी आप सुनो ध्यान से। जब हनुमान जी का जन्म हुआ था ना, तो जन्म से ही वो बड़े चतुर थे, बड़े शक्तिशाली थे, वायु के पुत्र थे, इसलिए जन्म से ही उनको हवा में उड़ने की कला उपगत थी। तो एक बार बचपन में खेल रहे थे, भूख लग रही थी सुबह सुबह उनको, उनमें आकाश में देखा, उनको लगा कितने बड़े ऑरेंज है, इतना चमकदार ऑरेंज है, खाने का फल है, इसलिए सूर्य की ओर वो कूद पड़े, उड़ने लगे आकाश में। पहले लगा कि बच्चा है कितना कूदे कितना उड़ेगा, लेकिन देखा तो बाद में सूरज के पास जा रहे हो, ना सूरज की अग्नि का फर्क पड़ रहा है उसको, ना कुछ हो रहा है, मानव जाएगा तो जल जाएगा, पास में जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन ये जा रहा है फल खाने के लिए। तो सभी सूरज ने कंप्लेंट किया ब्रह्म इंद्र को, भगवान बचाओ कोई बानर का बच्चा आ रहा है मुझे खाने के लिए। तो इंद्र ने क्या किया, सब देवताओं को भेजा, कुछ नहीं कर पाए, खुद आया हाथी को लेकर, उनका हाथी का नाम क्या बताओ, ऐरावत, ऐरावत को लेकर आ गए, 5 सुंड वाला, वो भागते भागते बीच में आ गया। तो हनुमान को लगा अरे ये भी अच्छा फल है, एक गुरा एक ऑरेंज कलर का है एक काले रंग का है, तो वो टर्न होके वो हाथी की ओर जाने लगा। तो फिर इंद्र भगवान बोले बहुत गड़बड़ मामला है, बहुत गंभीर मामला है, इसका तुरंत इलाज करना चाहिए। तो तुरंत अपने ओर छपकते हुए बालक को उन्होंने अपना वज्र देकर मारा। वज्र पता है क्या होता है, इंद्र का सबसे भारी वस्त्र है, वो भारी अस्त्र है, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। वो वज्र मारने से पहाड़ टूट जाते हैं और लावा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी चकनाचूर होता है पहाड़, इतना पावरफुल वज्र जो है एक बालक को मारा तो उसके इधर गिरा वो हनुवटी के ऊपर और हनुवटी का छेद हो गया और बालक जमीन से आकाश से जमीन पर गिर गया बेहोश होकर। तो वायु को पता चला पिताजी को कि मेरे इतने से बालक को इंद्र ने वज्र से मारा, बोलो कोई छोटा बच्चा होगा और कोई बड़ा आदमी आके उसको डंडे से बड़ा मारेगा लाठी से, तो बोले यार इतना सा बालक, तो तुमने इतना सा गलती के लिए लाठी से मारा उसको, तू कि तू केवड़ा आने तो केवड़ा, ऐसा बोलते कि ना अपन, तुम्ही कितनी मोटे थे, कितनी मोटे तो किसी लहान, ऐसा ही कुछ बातचीत हुआ कि आप इंद्र हो, देव के राजा हो, और आपका इतना भयंकर अस्त्र जो है वज्र, उसने अपने बालक को मारा, मेरा बेहोश होकर गिर गया है, गोद में लेके बैठ गया, गुस्सा भी आया और रो भी रहा है। क्या क्या वायुदेव ने सारे ब्रह्मांड का वायु रोक दिया। हाँ, ऐसा आपका गैस है, आपके किचन में गैस है ना आपके, हाँ चट्टी प्रभु जी, वो बोला खाना बन रहा है, सब कुछ रेडी है, अभी लंच का टाइम है, थोड़ा ही बाकी है, और गैस ही बंद कर दिया, तो क्या करेगा वो, ना उसको और पका सकता है, ना खा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, भूख लग रही है, पेशेंट लोग चिल्ला रहे हैं, वैद्य मैडम वहाँ से चिल्ला रही है, गैस बंद तो ये तो खाना बंद हो गया, लेकिन जब वायु बंद हो गया ना, तो सांस लेना बंद, एक्शन करना है ना मूवमेंट, वो बंद, जॉइंट में हवा होती है, स्पाइन में भी हवा होती है, पेट के अंदर भी हवा होती है, दिमाग के अंदर भी हवा होती है, नाक के अंदर भी हवा, सब जगह पकड़ी होती है, वहाँ पर हवा घूमती रहती है, सब जगह पर हवा का चाल चलन बंद, मानो सृष्टि रुक गई ऐसे ऐसे ही। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि मैं ऐसे करने को नहीं होगा, मुझे हाथ नीचे करने को नहीं होगा, उसके लिए हवा की जरूरत होती है। जब वायु घूमेगा, हृदय चलता है, सांस चलती है, कितनी जगह वायु घूमता है, 10 प्रकार के वायु होते हैं शरीर में, एक वायु पेट का हजम करता है, एक वायु मल बाहर फेंकता है, एक वायु ये करता है वो करता है, कई प्रकार के वायु, हृदय को चलाता है, स्पाइन को चलाता है, जॉइंट को चलाता है, संधिवात, अर्धांग वायु, कितने हमारे पास वायु के आयुर्वेद में क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। सब प्रकार के वायु का चलन बंद हो गया, मानव सृष्टि रुक गई, यहां पर नहीं सभी लोगों के काम रुक गए, तो सब लोग देवता लोग हाहाकार मच गया, सब वायु के पास आ गए, बोलो माफ करो, कुछ करो प्लीज, हवा बंद मत करो हवा पानी ये बेसिक चीज बंद मत करो, उसे जीवन से चलेगा कैसे। तो फिर उन्होंने हवा चालू कर दिया, हनुमान जी को होश में लाया, और वायुदेव को शांत करने के लिए और प्रसन्न करने के लिए क्या किया मालूम है आपको, सभी देवताओं ने बोला कि हम आपको बच्चे को वरदान देंगे, बेस्ट वरदान, हमारे पास जो जो कुछ है वो हम उसको वरदान देंगे उसका, तो कितना भाग्य है बच्चे का, देखो एक हनुवटी छेदने का बहाना हो गया, लेकिन उसके लिए क्या हो गया, इतने सारे वरदान, ब्रह्मा ने कहा कि मेरा ब्रह्म दंड से तुम्हें मृत्यु नहीं होगी, यमराज ने कहा यम दंड से मृत्यु नहीं होगी, हाँ किसी देवता ने उसको ये अस्त्र दिया, किसी ने वो अस्त्र दिया, किसी ने ये शस्त्र दिया, कोई अस्त्र दिया, और सब प्रकार की सिद्धि दिया उसको, बल दिया, किसी ने वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर वज्र का होगा, वज्र से तुमको मारा ना, शरीर ही पूरा वज्र का होगा, आगे जाकर वज्र का प्रभाव ही नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। सूर्य ने कहा कि मैं इसको विद्या दूंगा पूरी, मेरे पास इतना गौण ज्ञान है वो दे दूंगा, ऐसा करके सभी देवताओं का सभी प्रकार का वरदान मिला उसको, इतना सा बालक को। सूर्य ने क्या बोला, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ही कंडीशन है कि मैं हमेशा चलते रहता हूँ, मेरे को बैठने का अलाउड नहीं, 24 आवर्स मेरा काम चलना है सब जगह प्रकाश देने के लिए, तो मेरे को मेरे आपको मेरे रथ में बैठकर जब मैं काम कर रहा हूँ तभी मैं सिखाऊंगा आपको। तो हनुमान जी बोलते हैं आई आप तो मेरे गुरु हो, जब मुझे आप पढ़ाओगे तो मेरे आपके साथ में बैठकर कैसे पढ़ सकता हूँ, आपके नीचे बैठना पड़ेगा मुझे, आपके सामने बैठना पड़ेगा, विद्यार्थी को क्या ऐसे गले में बैठ के विद्यार्थी को पढ़ता है कभी, मैं विद्यार्थी बनूंगा तो आपका नीचे बैठ के हाथ जोड़ के सुनूंगा तब मैं सीखूंगा कुछ। तो बोलते मैं तो चलते रहता हूँ, कहाँ बैठोगे आप, बोलो कोई बात नहीं, मैं ना आपका रथ चलेगा ना तो उसके सामने मैं उल्टा चलूंगा आप सामने आओगे लेकिन मैं उसके उल्टे सामने मुंह करके आपके, आप आगे आते रहोगे, मैं उस आपके साथ मुंह करके उल्टा भागते रहूंगा और आप जो पढ़ा होगा वो सुनूंगा। सोच सकते हो विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए, एक विद्या प्राप्त करने के लिए हमको कितना आतुर बनना चाहिए। सुनो आप, हम लोग को क्या ना बुक खोलने को इंटरेस्ट है, ना कुछ याद करने को इंटरेस्ट है, एकदम आलसी बने हुए हम लोग, और एक विद्यार्थी हनुमान जी है उसको सीखने को मिल रहा है, तो फिर वो कैसे सीख रहा है, गुरु बोल रहा है मेरे साथ बैठ के सीखो, लेकिन विद्यार्थी बोला नहीं आप मेरे गुरु हो तो आपके नीचे मैं खड़ा रहूँगा, आप चल रहे हो तो मैं आपके साथ चलूँगा। पूरा विद्या जितना भी है ना वो हनुमान जी ने उल्टा भागते हुए गुरु के सामने मुँह करते हुए सीखा हुआ है। इसलिए तो कभी नींद नहीं आया उसको लेक्चर में इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कई साल तक, लेकिन हनुमान जी को नींद क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भाग रहे ना उल्टा, है ना, भगवान के लिए, भगवान की सेवा में थे वो। हमारे बचपन में एक बार अमिताभ बच्चन को जख्म हुआ था शूटिंग करते हुए, तो एक आदमी ना किधर तुम्हें दूर से उल्टा चलते सिद्धिनायक आया था अमिताभ बच्चन के लिए, दूर से कहीं उल्टा चल के आया था एक व्रत के रूप में। लेकिन ये तो सब दुनियादारी की बातें हैं, हनुमान जी का जो काम है भगवान की सेवा में है। तो बाद में क्या हुआ, हनुमान जी उद्दंड बन गए एकदम। अरे बालक के हाथ में इतना सारा शस्त्र अस्त्र विद्या मिल गया तो बालक उद्दंड बन गया, फिर इधर जाके मस्ती करो, वहाँ मस्ती करो, यहाँ पर परेशान करो, इसको तकलीफ दो, साधु लोग यज्ञ में बैठे हुए हैं तो इसका यज्ञ में जाके कुछ पानी डाल दो, इसका वस्त्र नदी में गया स्नान करें साधु का वस्त्र उठा के भाग भगा के लेके जाओ, या वस्त्र एक्सचेंज करो, या पानी के अंदर जाके उनका पाँव खींचो, कोई ध्यान में बैठा है तो उसको पाँव खींचो, उसको पीछ में गिरा दो, ऐसा काम करने चालू किया। क्योंकि इतना वरदान प्राप्त हुआ था कि किसी का शाप लगना भी मुमकिन नहीं था, या कोई शस्त्र अस्त्र मारना भी मुमकिन, इतना सारा बोलता ना वरदान मिल गया था उसको। सब लोग परेशान हो गए, साधु लोग ब्रह्मा के पास में गए, बोले क्या है सब, इतना सारा बच्चे को वरदान देके रखा है तो अब सब परेशान करके रखा है सबको। तो फिर सबने मीटिंग किया और ब्रह्मा जी की परमिशन से बच्चे को साप दे दिया कि सारी विद्या, सारी कला, सारी शक्ति, जितना भी परेशान, जितना भी विद्या उसके पास में है वो सब भूल जाएगा, अपनी शक्ति भी भूल जाएगा, हवा में उड़ने की या कुछ करने की सब शक्ति भूल जाएगा, एकदम कॉमन बच्चा बन जाएगा। उस दिन से हनुमान एकदम नम्र बच्चे बने, क्योंकि अपनी सारी शक्ति को भूल गए हो। लेकिन साथ साथ में उन्होंने एक और भी उनको उत्साह दे दिया, उत्साह मतलब डिस्काउंट, कि जब इसकी सबसे अधिक जरूरत पड़ेगी ना उसको और कोई उसको याद दिलाएगा तो उसको दोबारा याद आएगा। तो जाम्बुवान को ये रहस्य मालूम था, तो जब जाम्बुवान जी, हनुमान जी कोने में खड़के बहुत परेशान हैं, सब लोग अपना अपना गिनती कर रहे हैं, किसी को पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जाम्बुवान को याद आया, अरे इसके पास तो इतनी शक्ति है, 100 योजन क्या 200 योजन भी छलांग मार सकता है, खाली याद करने की जरूरत है। तो जाम्बुवान जी गए हनुमान जी के पास और उन्हें पूरी कहानी सुनाई, हनुमान जी याद है आपने उद्दंडता की थी बचपन में, तो आपको शाप मिला था कि आप सब शक्ति भूल जाओगे, और ये भी आपको शाप मिला था कि आपको जब कोई याद करेगा तो आप दोबारा याद करके अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी हनुमान जी सुन रहे ना तो ऐसे बड़े 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 होने लगे आकाश में, विराट रूप धारण कर दिया उन्होंने, और इनकी बात पूरी भी नहीं हुई, जो छलांग लगाई वहां से सीधे लंका में पहुंचे सीधे, और छलांग इतनी जोर से लगाई थी उनके साथ में कई पेड़ उखड़ के उनके पीछे गए आकाश में। आप देखते हो ना जब ट्रेन जाती है ना फास्ट स्टेशन से, तो सब बोतल कचरा अपने साथ में उड़ा के लेके जाती है, इतना फास्ट चलती थी वो, गति की वजह से जितना लूज सामान स्टेशन पर है वो सब साथ में उड़ता है उसके, वैसे ही जोर से वेग में आकाश में उड़े तो बड़े बड़े पेड़ भी उनके उखड़ के उनके पीछे गए आकाश में, इतनी गति थी उनके अंदर। और बड़ी लंबी कहानी है वो, उनको 3 बार बीच में रोका गया टेस्ट के रूप में, ये उनका निश्चय इतना पक्का था। एक परीक्षा ऐसी हुई कि एक पर्वत ऊपर आया समुद्र के अंदर, वो बोला सर रुक जाओ थोड़ा सा आराम करके जाओ, पर थोड़ा इतना थके हो गए इतना लंबे से उड़ के आ रहे हो, थोड़ा रेस्ट ले लो फिर आगे जाओ। लेकिन इन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच। हाँ फिर एक राक्षसी बीच में आई, बहुत सारी लंबी लंबी कहानी है। वो कहते हैं कि सत्वगुण रजगुण और तमोगुण 3 आए सामने उनकी परीक्षा करने के लिए, और तीनों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, उसके मुँह में फंसे नहीं वो। और लंका में गए तो बुद्धि कुशलता शक्ति सिद्धि सबका उपयोग किया उन्होंने, लेकिन कैसे किया उपयोग, भगवान के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। इतनी सारी सिद्धियां कलाओं का उपयोग किया ओनली फॉर गॉड, खुद के लिए नहीं किया कि मेरा मान बढ़ेगा सम्मान बढ़ेगा। छोटा रूप धारण कर दिया उन्होंने, एक सिद्धि का उपयोग किया, इतना छोटा बन गए कि सब जगह पर इतना सा कीटक बन के सब जगह ढूंढ रहे थे कहाँ पर है सीता हमारी। रावण के दरबार में गए, रावण को देख के बड़े आश्चर्य हो गए, कितना सुंदर आदमी है, इतना सुंदर, इतना पहाड़ जैसा शरीर है उसका, इतनी भुजाएं बड़ी बड़ी है, इतने अलंकार पहने हुए, इतना विद्वान लग रहा था वो। उसके आसपास कई स्त्रियां सोई हुई थी, तो वो ढूंढ रहे हैं उनको कि इसमें कोई सीता है क्या। फिर उसने विचार किया, अरे सीता तो महापतिव्रता औरत है, वो इतनी वनवास में अपने पति से दूर रह रही है, तो यहाँ चैन से सोई कैसे होगी वो, इम्पॉसिबल ना, तो इनमें से कोई भी सीता नहीं हो सकती, अगर सीता होगी तो वो जग के कहीं बैठ के रोती होगी, आराम से निश्चिंत होकर सो नहीं सकती वो, तो ये सब रावण की पत्नियां हैं, इसमें सीता नहीं हो सकती। फिर बाहर गए वहां से, फिर सीता को ढूंढ के निकाला, और इतने बुद्धिमान रावण है, उन्होंने तब तक कभी भी सीता को देखा नहीं था, और राम जी ने उनको अपने अंगूठी दिखा दे दिया था पहचान के लिए। फिर कैसा मानेगा आदमी जिसने कभी किसी को देखा नहीं है, और वो संदेश लेके आ रहा है, तो आप कैसा विश्वास करोगे। सब राक्षस यहाँ पर बैठे हुए, कभी भेष बदल के आती है, कभी कुछ बदल के आती है, धमकी देती रहती है। अब बोले कि बंदर बन के आई है मुझे फैलाने के लिए, तो कैसे मानेंगे वो। इतने बुद्धिमान व्यक्ति है हनुमान जी, यहाँ सोच रहे हैं कि उसके मन में क्या विचार आता होगा, उसको रोज सब राक्षसियां अलग अलग भेष बदल के धमकी दे रही है। रावण भी आ रहा है, एक बार तो राम का सर लेकर आया प्लेट के अंदर, ना देख तेरे पति को मार के उसका सर लेकर आया हूँ, अभी क्यों रोती है तू, वो मर गया हो, अब मैं ही तेरा पति हूँ, अभी छोड़ दे उसको, भूल जा, मुझको हाँ बोलो, शादी करो मेरे साथ। और कुछ देर बाद वो जो सर था वो अदृश्य हो गया क्योंकि माया भी था। ये सब सीता ने ऑलरेडी देख चुके हैं, वो सब कुछ रोज का नाटक देख चुकी है वो। तो ऐसी अवस्था में अगर मुझे राम जी का संदेश पहुंचाना है तो कुछ दिमाग चलाना होगा। तो क्या करें, उन्होंने छोटा रूप धारण करके उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए वो, जिसमें नीचे सीता को रखा गया था, और वहां बैठकर पूरा रामायण गाना शुरू किया उसने। रामायण की पूरा कथा जो है उसका वर्णन करना शुरू कर दिया। वो कथा वहां तक आ गई कि अभी सीता जंगल में बैठी हुई है अशोक वाटिका में, और वो हनुमान नाम का बंदर जो है उड़ के आ रहा है, वहां तक आके कथा रोक दिया। तो सीता बहुत सतर्क हो गई कि इतना सारा डिटेल किसको मालूम हो सकता है, इतना डिटेल जो है वो सीता जी के मन में विश्वास प्रकट करने के लिए हनुमान जी ने पूरा डिटेल सुनाया उनको, टू गेन कॉन्फिडेंस कि मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, भेष बदल कर नहीं आया हूँ, मैं आपका राम का सेवक हूँ, भले आपने मुझे देखा नहीं होगा कभी, लेकिन अपना योग्यता को सिद्ध करने के लिए ये बुद्धि चलाया उसने। तो उसने खड़े होकर पूछा, कौन हो आप और कहाँ पर हो, मुझे दर्शन दो। तो फिर कूद के नीचे आ गए और दंडवत प्रणाम किया। सबसे पहली बार सीता का दर्शन किया उन्होंने, और सीता ने सबसे पहली बार उनका दर्शन किया, और उनका विश्वास और बढ़ाने के लिए फिर अंगूठी को प्रस्तुत किया। अब वो प्राइवेट मुद्रिका उनकी केवल सीता को पता थी, ये सब उनकी प्राइवेट बातें हैं, लेकिन जब वो प्राइवेट वस्तु बंदर के हाथ में जब भगवान ने भेजा तो उसको विश्वास हो गया कि मेरे पति के तरफ से ही आदमी आ रहा है। अभी देखो, प्रभु रामचंद्र वहां पर सीता का हरण हुआ इसलिए परेशान है, समाधान क्या है उसका, सीता को ढूंढो और लेके आओ, मैटर एंड्स, है ना। तो हनुमान जी ने कहा, माता सीता आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको तुरंत लांग कर ले जाता हूँ और प्रभु से मिला देता हूँ, कोई तकलीफ ही नहीं, खत्म, सॉल्यूशन एकदम सिंपल है इसका। तो सीता देवी ने क्या कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैंने इच्छा से रावण को स्पर्श नहीं किया था, रावण ने मुझे जबरदस्ती मुझे हाथ लगाकर मुझे पकड़कर उठाकर स्पर्श करा के डाला था विमान के ऊपर, और उठा के जबरदस्ती यहां पर रखा है, मैंने कभी भी मेरी मन से उसको स्पर्श नहीं किया था, अगर आपके कंधे पर बैठती हूं तो इसका मतलब यह होता है कि मैं मेरी इच्छा से आपके कंधे पर बैठने वाली हूं, ये मेरे पतिव्रत धर्म के खिलाफ है, इसलिए मुझे अगर बचाना है तो प्रभु राम को ही आना पड़ेगा, तब तक मैं इंतजार करूंगी यहां पर। कितना दुख हो गया होगा हनुमान जी को, अरे इतना सिंपल बात थी, मैं तो तुम्हारे बेटे की तरह हूँ, लेकिन फिर भी माता के भावना का उन्होंने सम्मान रखा। पतिव्रता स्त्री का भी भावना है ना, कितनी इंपॉर्टेंट है वो, उसकी पवित्रता का प्रतीक है वो, इंग्लिश में कहते हैं डिग्निटी है उसकी, वो डिग्निटी स्वाभिमान सम्मान है उसका, आत्मसम्मान है वो। तो प्रभु राम का सेवक के नाते उन्होंने प्रभु राम के माँ पत्नी का सम्मान रखा, तो काम हो गया उनका, उनको मैसेज भी दिया, उन्होंने दोबारा मैसेज भी दिया प्रभु को क्या देना है, सब काम पूरा हो गया। अभी जो फर्स्ट क्लास सेवक होता है ना, फर्स्ट क्लास सेवक, वो उसको जो बताया गया है उसके आगे जाकर प्रभु का इष्ट काम करता है। अब बोला अभी थोड़ा था लंका में आए गए हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या लंका की स्थिति है, कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ कहाँ बल स्थान है इनका, कितने कितने योद्धा है, ये रावण नाम की चीज़ क्या है, जरा एक बार देख लेते हैं। तो अगर रावण को अगर अट्रैक्ट करना है, रावण का दर्शन करना है, तो ऐसा कुछ करना होगा कि उसको सैनिक आके मुझे पकड़ेंगे, फिर दरबार में जाने को एंट्री मिलेगा, फिर रावण का दर्शन करेंगे, रावण को भी चेतावनी देकर लौट के आएंगे। हाँ, कितना हिम्मत थी उसके अंदर। तो अशोक वाटिका में बैठकर उसका नाश करना शुरू किया, ये पेड़ तोड़ो, ये पेड़ तोड़ो, इसका फल खाओ फिर तोड़ के फेंक दो। इतना बढ़िया सुंदर वाटिका बना के रखा था, जो पूरे 14 लोगों के अंदर देवताओं से भी बढ़कर था वो अशोक वाटिका। एक राजा का प्राइवेट फॉरेस्ट था वो, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। तो सब सैनिक जागरूक हो गए, अरे बंदर आके क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है, इतनी हिम्मत कैसे बंदर की यहाँ पर आके हमारे होते हुए। तो सबने उसको पकड़ने का प्रयास, सबका वध कर दिया उसने। उनका चीफ जो था उसने देखा कोई साधारण मानव नहीं है ये, इतने बड़े राक्षसों को मार सकता है, मतलब अभी इससे युद्ध करना बेकार है, अभी रिपोर्ट करते हैं हायर अथॉरिटी को। तो उन्होंने क्या किया, जाकर दरबार में रिपोर्ट किया। तो दरबार से कई सैनिक आए उनके आदेश पर, जाओ कोई बहुत असंभव ऐसा वानर आया हुआ है उसको जाके मारना चाहिए। तो हनुमान ने उसका भी वध कर दिया। फिर खबर गई, अरे वो भी मर गए, दूसरे गए वो भी मर गए। अच्छा चल क्या रहे, कौन सा वानर है ये, कौन है क्यों नहीं आदमी। तो बाद में इंद्रजीत खड़ा हो गया, पिताजी को बोला इंद्र पिताश्री आप बेकार सैनिकों का वध करवा रहे हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर उस वानर को मार के आता हूँ। तो इंद्रजीत निकला, नंबर 2 वॉरियर, हाँ नंबर 1 रावण, नंबर 2 इंद्र था रावण का दरबार में। वो निकला सैन्य लेकर, उसके पास सिद्धि थी, उसके पास बल था, अस्त्र था, शस्त्र था, सब कुछ था उसके पास। उसके साथ हनुमान जी ने बहुत घनकर युद्ध किया, वो भी परेशान हो गया, अरे बाप रे क्या शक्ति है उसके अंदर, जो मैं चला रहा हूँ सब परास्त कर रहा है उसको, क्योंकि उसका सबको वरदान था ना, उसको वरदान था, उसको याद करा के भेज दिया गया था ना उसको, तो अभी उसके पास पूरी शक्ति थी, सब देवताओं के सभी वरदान, सभी अस्त्र शस्त्र सिद्धियां सब उसके पास था, इतनी चतुर बुद्धि भी थी। तो इंद्रजीत खड़ा नहीं रह पाया। तो उसने आखिर में जो सृष्टि का नाश करने वाला है ऐसे ब्रह्मास्त्र को फेंका उसके ऊपर, हनुमान जी के ऊपर। और ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि मेरा ब्रह्मपाश भी आपको कभी परास्त नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो ब्रह्मपाश भी था, वो परास्त होने वाला था, लेकिन हनुमान जी इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा वैसे भी ब्रह्मा जी का अस्त्र है, सम्मान करना मेरा कर्तव्य है क्योंकि ब्रह्मा जी है वो। तो उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़कर सर झुका लिया और अपने आप को ब्रह्मपाश से बंधवा लिया और उसको बंदी बनाकर बांध कर इंद्रजीत बड़ी विजयी भावना लेकर उसको खींचकर दरबार में लेके गया। उसके पीछे क्या भावना थी, अगर मैं इसको यहाँ परास्त करता हूँ तो मुझे लंका में रावण का दर्शन नहीं हो सकता और जो भी मुझे चेतावनी मैसेज रावण को देना है वो नहीं हो सकता है, इसलिए अगर मैं यहाँ पर सर झुकाता हूँ और बांध के लेता हूँ तो मुझे लेकर कहाँ जाएगा, ये अपने पिता के पास लेकर जाएगा ना, तो मुझे अपने आप ही इजीली दर्शन होगा और आगे का मैसेज मैं उनको दे दूंगा। इसलिए बंदी बनकर खुद इच्छा से, ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर हो गए हार गए, इच्छा से बंदी बनकर वहाँ पहुँच गए और वहाँ निर्णय होने लगा क्या करना चाहिए, बंदर को क्या करना चाहिए। सब लोग हंसने लगे उनको देखकर। तो फिर हनुमान जी ने अपना जो बताने का था वो मैसेज दे दिया कि तुम नहीं जानते कि तुम किसकी पत्नी को उठाकर लेकर आए हो, तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम बड़ा अपनी बल पर गर्व करते हो, तुम्हें पता नहीं एक राम आकर पूरे राक्षस वंश को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए रावण अभी भी जग जाओ, अभी भी आपको मौका है, मेरा आपको सुझाव है कि आप राम की पत्नी को लौटा दो, आप सब नष्ट हो जाएंगे। तो सब लोग ठहाका मार के हंसते हैं, अरे बंदर क्या बात कर रहा है, उसको पता नहीं वो किससे बात कर रहा है। तो फिर वो लोग उसके बात को कुछ गंभीरता से सुनते ही नहीं है, फिर भी रावण के साथ में खड़े होकर हनुमान जी बड़े ही वीरता से उसको संदेश देते हैं कि मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, अभी भी नहीं सुधरे तो मरने को तैयार हो जाओ। तुम्हारी लंका के सारे बंधन को तोड़कर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और सीता को मिलकर भी आ रहा हूँ। मैं तो एक सामान्य वानर हूँ उनकी सेना का, वही बड़े बड़े वीर तो आने बाकी हैं। मैं यहाँ तक इसलिए पहुँचा हूँ कि मुझे तुम्हें संदेश देना था, अभी भी वक्त है। फिर भी रावण के दिमाग में लाइट ने जला, उसने बोला बंदर का अभी इलाज करना चाहिए। तो क्या बोला कि बंदर को अपने पूंछ पर बड़ा गर्व होता है, इसके पूंछ को आग लगा दो। तो उसको ना पब्लिक में लेके गए जहाँ पर स्त्रियाँ बच्चे रहते, सबको बुलाया और पब्लिक में मैदान में जाकर उसकी पूंछ को आग लगाया। यहाँ पर सारी खबर जो है रनिंग कॉमेंट्री की तरह सीता को पहुँचती है कि तुम्हारे बालक को, भक्त को ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, अभी उसके पूंछ को आग लगाया जा रहा है। तो सीता देवी ने अग्नि को प्रार्थना शुरू किया कि हे अग्निदेव, मेरे पुत्र हनुमान जी के पूंछ को अग्नि जलाया जा रहा है, आप कृपा करके उसको जलाना मत, उसका गर्मी, उसका आँच, उसका जलन, उसका नहीं होना चाहिए। और वायुदेव को प्रार्थना किया, वायुदेव अभी अग्नि लेकर जा रहा है, उसको ठंडी ठंडी हवा देना आप। तो वायु जैसा एयर कंडीशन लेकर उसके पीछे जा रहे हैं और अग्नि का पूंछ जलने पर भी जलने का दर्द या पेन या आँच हनुमान जी को नहीं हुआ। और जैसे ही पूंछ को आग लगाया, तब तक वो बंदी बनकर रहे, ऐसे पूंछ को आग लगा के पूरा हो गया तो ऐसा झटका दिया पूंछ को, सब राक्षस वहीं पटक के मर गए। इतना झटका दिया और छलांग लगाया सीधे रावण के दरबार पर, उसको आग लगा दिया। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पाँचवा। रात का समय था, सब लोग सोने जा रहे थे, एक के बाद सारे महलों को जला दिया उन्होंने। और रावण की लंका जो थी वो रावण ने युद्ध में जीतकर देवताओं को परास्त करके सोने के ईंटों से अपना लंका बनाया था पूरा, खाली अपना महल नहीं बनाया था, सभी जितने महल थे सारे सोने के ईंटों से बने थे। इसे क्या बोलते हैं, रावण की लंका सोने की, है ना, लंके सोना चा बेटा, ऐसा हमारे मराठी में कहावत हुआ करती थी। लंका में पूरा सोना ही सोना था, सब कुछ सब जलाकर बाद में समुद्र में छलांग लगाया। लेकिन हिम्मत कितना है देखो, राक्षस के पूरे राज्यसभा में बीच में जाकर उसके लीडर को ही धमकी देके आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक पता होना चाहिए एक बात, कि रावण को मारने की शक्ति अकेले हनुमान के अंदर थी। उसी समय वो युद्ध में इंद्रजीत को परास्त करके रावण को मार के भी वहां पर लौटना शक्य मुमकिन था उनको, क्योंकि इतने सारे वरदान थे उनके पास, इतना बल था उनके पास, वज्र का शरीर था, कोई रावण का अस्त्र शस्त्र काली विद्या कोई उस पर प्रभाव नहीं करने वाली थी। तो फिर भी उन्हें केवल चेतावनी देकर वहां से निकल के क्यों आए हो, उधर ही सब युद्ध समाप्त करके क्यों नहीं आए, है ना। देखो सीता ने क्या बोला, मैं तुम्हारे कंधे पर नहीं आ सकती, तो ठीक है मान लिया उन्होंने, वहां जाने का, युद्ध करने का, सबको मार देने का, फिर छलांग लगाने का, फिर राम को लेके आके सीता को लेके जाने का, इतना सिंपल था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि सेवक का भाव ऐसा होता है कि जो भी महान कार्य होता है उसका श्रेय स्वामी को मिलना चाहिए, अगर मैं ही सब करूंगा तो राम का गौरव कैसे होगा, तो मेरे प्रभु को गौरव होना चाहिए। इसलिए केवल चेतावनी दिया, उनको मारने का काम प्रभु को छोड़ दिया कि इसको मारेंगे तो गौरव प्रभु का होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए सब करके वापस लौट के जब युद्ध हुआ तो प्रभु राम के हाथ से रावण का वध हुआ। हनुमान जी को मारने की शक्ति किसी के अंदर नहीं थी, हनुमान जी का पराजय कभी भी नहीं हुआ लाइफ में। तो एक व्यक्ति के अंदर सारी पावर होने के बाद भी वो बड़ा काम नहीं करता है अपने स्वामी के लिए, ये उसके नम्रता का प्रमाण है, है ना। मुझे हाथी को अगर जो किसी चीटी ने बोला ए बॉक्सिंग करोगे मेरे साथ में ऐसा ऐसा करके, तो हाथी बोलेगा क्या बोलूँ उसको भी बार बार चीटी से चैलेंज कर रही है, आप डरपोक हो, आपके अंदर ताकत नहीं है, इसलिए आप मुझे युद्ध में आने के लिए तैयार नहीं हो। तो हाथी क्या करेगा, एक पाँव रखेगा, ख़त्म कर देगा उसको। लेकिन फिर भी अगर हाथी ने कुछ नहीं किया, अरे तो चीटी है उसको तो अक्ल नहीं है, छोड़ देगा, तो हाथी की नम्रता है वो। अगर हाथी ने उसको कुछ भी नहीं किया और चला गया, मतलब हाथी डरपोक है ऐसा मतलब नहीं होता उसका। उसी तरह से अगर हनुमान जी ने केवल चेतना दिया उसको, चेतावनी दिया और कुछ नहीं किया और चला गया, इसका मतलब हनुमान जी डरपोक थे ऐसा नहीं है, वो जानते थे कि मेरे प्रभु का गौरव होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सब कुछ काम प्रभु के लिए छोड़ दिया। और रावण, राम जी, लक्ष्मण जी, इनको गौरव दिया सब कुछ, और उनकी सेवा में उनके असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। उसके आगे जाकर भी उनकी नम्रता की कथा आती है कि जब अगला युग आया और महाभारत का युग, मतलब कई लाखों साल बीत गए उसके बाद में, रावण जी का वध होने के बाद राम जी का अभिषेक हुआ, राम जी चले गए अपने धाम में और हनुमान जी को वरदान दिया कि आप यहीं रहो, आप नहीं मरोगे, आप यहीं रहोगे और जब तक मेरा नाम का जप किया जाएगा तब तक आप रहोगे, मेरा गौरव किया जाएगा, मेरे लीलाओं का वर्णन किया जाएगा तब तक तुम यहीं रहोगे। तो सब लोग अयोध्या जी भगवान के धाम में चले गए और एक हनुमान जी पीछे रह गए। दुखने क्या उन्होंने, उन्होंने कहा अगर मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो मैं भी उसमें खुश हूँ, मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है मेरे को मालूम नहीं, अगर मेरे प्रभु की वो इच्छा है तो मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे करना वही है जो मेरे प्रभु चाहते हैं। प्रभु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सबको लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझे आपके साथ में चलना है प्रभु, ऐसे मत करो, इतना मैंने आपका सेवा किया, इतना मैंने त्याग किया आपके लिए, कितना जगह पर आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, अभी आयन मौके पर आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, प्लीज़ प्रभु जी प्लीज़ लेके जाओ। नो, स्वामी की क्या इच्छा है उसको पूरा करना है, अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी हो जाए, स्वामी के काम के लिए जो उनको अच्छा लगे, सम सिद्धिर हरितोषणम, जिसमें स्वामी का संतोष है वही मुझे करना है। तो फिर इतने बड़े बलशाली हनुमान जी महाभारत में भी थे, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो प्रभु ने हनुमान जी को याद किया, आ जाओ, और आदेश दिया कि तुम अर्जुन के फ्लैग है ना झंडा उसके ऊपर बैठो। अभी आप सोचो जो व्यक्ति के अंदर इतना शक्ति है, इतना सिद्धि है, इतना बल है, इतनी विद्या है, इतनी बुद्धि है, इतनी चतुरता है, वो अकेला कौरवों की सभी आर्मी को मारने में समर्थ थे अकेला, तो मन में क्या बोलते अगर हम होते तो, अरे प्रभु आप काय को उनको तकलीफ देते हो, इतने पांच अच्छे अच्छे बालक राम पांडव बेचारे इतने परेशान हैं, इतना पत्नी का अपमान हो गया, इतने दुखी है बेचारे, इन सबको आप रेस्ट दे दो, मुझे आदेश दे दो, मैं अकेला जाऊंगा सबको मार के आ जाऊंगा, आपको जो कर रहे हैं वो सब पूरा करके आ जाऊंगा। जिसके पास शक्ति है वो बोल सकता है ना ऐसे, लेकिन प्रभु ने क्या आदेश दिया, आपका सेवा खाली एक ही है, अर्जुन के रथ पे बैठने का झंडे के ऊपर, और वहां से केवल गर्जना करते रहने का, बस जब भी भीम चिल्लाएगा तभी चिल्लाने का और बीच में भी गर्जना करते रहने का ताकि शत्रु के हृदय में डर पैदा हो, उनको पता नहीं चलना चाहिए कहाँ से आवाज आ रही है। बीच बीच में बहुत जोर से गर्जना करना ताकि उनके हृदय में भय उत्पन्न होना चाहिए। अभी एक इतने बड़े बलशाली आदमी को जिसके पास इतना पावर है तो सेवा क्या दिया, खाली चिल्लाने का बस। तो बोलेगा प्रभु क्या इतना इतना मेरे पास शक्ति है, क्या सेवा दिया आपने, कोई लायक मेरे लायक सेवा हो तो बताओ, मेरे जो कर सकता हूँ मेरे सम्मान के लिए कुछ सोचो आप। नहीं, जो प्रभु सेवा देते हैं वो उतनी ही भावना से करेंगे, जो बड़ी सेवा देंगे तो भी उतनी भावना से करेंगे, जो तुच्छ सेवा देंगे तो भी उतनी भावना से करेंगे, अपना आत्मसम्मान बीच में लाएंगे, मिक्स नहीं करेंगे उसके अंदर। तो हनुमान जी का कपिध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर रहना ये उनका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका, कि एक बड़ा आदमी, शक्तिशाली आदमी, एक तुच्छ सेवा करने के लिए भी स्वामी के लिए कैसे तैयार रहता है, ये उनकी नम्रता का एक उदाहरण है। तो हनुमान जी के अंदर ऐसे दिव्य गुण थे कि इतना सारा धन दौलत, सॉरी सिद्धियां और बल और अस्त्र होने के बाद भी एक दुर्लभ गुण था उनके अंदर, वो है नम्रता। और ऐसे कहते हैं कि जिसके पास ऐश्वर्य होता है, धन दौलत होती है, सुंदरता होती है, विद्या होती है, बल होता है, इतने सारे ऐश्वर्य जो सबको चाहिए वो उसके पास प्रचुर मात्रा में है, इतना सब होने पर भी जो नम्र रहता है उसका मतलब है कि प्रभु की कृपा उस पर हो गई है। प्रभु की कृपा के बिना इतना सब होने पर कोई नम्र नहीं बन सकता है, थोड़ा तो गर्व उसको आएगा ही, अरे इतना बल है मेरे अंदर। बल अपने आप ही लोगों को भ्रष्ट कर देता है, अगर वो बल भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो वो व्यक्ति को भ्रष्ट ही कर देता है। जैसे अभी गरीब आदमी है, वो पहले बूट पॉलिश करने वाला था, हाँ, और कुछ साल के बाद में वर्ल्ड का सबसे रिच आदमी बना, तो कितना गर्व करता है मन में, उसके बाद बात में आता है कि मैं कुछ भी नहीं था, अपने बल के ऊपर सब ये साम्राज्य खड़ा किया मैंने फ्रॉम स्क्रैच, हाँ, कुछ भी ना होते हुए सब कुछ खड़ा कर दिया है, ये मेरे बल का, मेरे बुद्धि का, मेरे मेहनत का परिणाम है, वो सब श्रेय लेगा अपने ऊपर। तो अगर वो सारा ऐश्वर्य भगवान की सेवा में नहीं है तो उससे केवल गर्व ही होना है और कुछ नहीं होना है। लेकिन सारा ऐश्वर्य, सारा अधिकार, सारा इन्फ्लुएंस, सारी शक्ति, सारा बल, सारी बुद्धि अगर सब कुछ भगवान की सेवा में है तो उससे कोई अहंकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए अगर किसी को अहंकार से बचना है तो उसको अपने पास जो भी कुछ है वो भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी आपके पास में है, आपको लगता है कि आपके पास है वो वस्तु, तो उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए। उससे दो बातें होती हैं, एक तो आप अहंकार से बचते हो और वो वस्तु भगवान की सेवा में लगाने के बाद में वो कम नहीं होती है, उसकी वृद्धि हो जाती है। कोई अमीर आदमी है, अगर वो भगवान की सेवा में धन लगाता है तो उसके धन की वृद्धि हो जाती है, भगवान उसकी श्रीमंती को बढ़ा देते हैं। जो जो वस्तु भगवान की सेवा में आप लगाएंगे, भगवान दुगने दाम से आपको उससे समृद्ध करेंगे। ये जिसको पता है वो कभी भी भगवान की सेवा में अपनी वस्तु को लगाने में संकोच नहीं करेगा, क्योंकि भगवान को जो देता है उसका कभी भी कम नहीं होता कुछ। देने में हम लोग कंजूसी करते हैं ये ना जानते हुए कि ये देने से मेरी वृद्धि होने वाली है, जो दे रहा हूँ वो भी बढ़ने वाला है और मुझे जो पता नहीं है वो भी बढ़ने वाला है। तो इसलिए हनुमान जी महान हैं। बहुत सारे योद्धा हैं, बहुत सारे वीर हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं पिछले इतिहास के, हनुमान जी उसमें यूनिक है, क्योंकि स्वामी की इच्छा के सामने कभी भी उसने अपना विचार डाला नहीं, कभी भी ना अपनी बुद्धि ना अपना विचार प्रस्तुत किया, तो स्वामी ने कहा वही सेवा किया हर समय पे। यानी में बहुत सारी कहानियां हैं, हनुमान जी हमारे लिए उदाहरण हैं, और विशेष करके पिछली बार हमने पूरा इतिहास सुनाया हमारे और हनुमान जी का भक्ति वेदांत में मेडिकल्स के लाइफ में हनुमान जी कहाँ से कहाँ हमारे पास आ गए सब बताया। तो हनुमान जी का हमारे परिवार में होना ये हमारा एक शक्ति स्थान है कि हमारे बीच में हनुमान जी हैं। केवल एक चीज कमी है कि उनका हम आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। उनका आश्रय ग्रहण करेंगे तो हनुमान जी जहाँ पर है वहाँ पर राम जी भी हैं, वो भी आपके साथ हैं। जहाँ हनुमान जी और राम जी हैं, और जहाँ राम जी का नाम लेते हैं, जहाँ कृष्ण का नाम लेते हैं, जहाँ राम जी की लीला का वर्णन करते हैं, वही हनुमान जी भी आ जाते हैं, और ये आ जाते हैं उनके पीछे स्वामी भी आ जाते हैं। कितनी महान कृपा है हमारे ऊपर। दो मंदिर पे खड़े हैं, सब जगह विरासत में रहते हैं, शस्त्र अस्त्र लेकर यहाँ पर अभय दान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अभय मुद्रा में खड़े हैं, गदा को नीचे रखा है, ऐसा कंधे पे रखा नहीं है। सभी पीड़ितों को, सभी दर्दियों को, सभी लोगों को जो दुख भोग रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, उनको सांत्वना देने के लिए खड़े हैं वहाँ पर। हमको पता नहीं है कितने संकट बच गए होंगे उनके वहाँ होने से, है ना, वी डोंट हैव एनी आइडिया क्या क्या बच गया होगा, लेकिन पता है कि उनके होने से कई संकट वहाँ से बच गए होंगे, जो हमें सामना करना पड़ता था और हमें परेशान होना पड़ता था, वो सब वस्तुओं का उन्होंने, केवल हमने उनको वहाँ रखा है श्रद्धा से, इसलिए सभी संकटों का निवारण करते होंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव ने खास कहा था कि उनको कोने में छोटे से मंदिर में रखा है, उसको वहाँ से निकाल कर बड़ा मंदिर बनाओ उनके लिए, ऐसा जगह बनाओ कि लोग देखते उनको वंदन करेंगे, अपने आप स्वामी के सेवक का वंदन करके उनको स्वामी की कृपा प्राप्त होगी, है ना। तो ये हमारा परम भाग्य है। आगे भी कई कथाएं बची है, वो आपको अगले मंगलवार को बताते रहेंगे। बोलो श्री हनुमान जी की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, गन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की जय हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।